ओम शांति। आज बाबा ने याद दिलाया जब से हम बाबा के बनते हैं तब से हमारी डोर बाबा से बंध जाती है। तब से हम बाबा की श्रीमत पर ही चलते हैं और हमारी पूरी जिम्मेदारी बाबा उठा लेते हैं। केवल इस जन्म के लिए नहीं लेकिन 21 जन्म के लिए बाबा गारंटी देते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। हमको निश्चिंत कर देते हैं। इसका बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे किसी कन्या की शादी होती है तो उसका पल्लू उसके पति के साथ बांधते हैं तो वो जिम्मेवार हो जाता है कि मुझे इसकी परवरिश करनी है। लेकिन वो एक जन्म के लिए, वो तो एक जन्म भी पूरा कर पाए या नहीं, लेकिन बाबा के साथ जो हमारा पल्लू बंधा है बाबा हमें पूरी गारंटी देते हैं। साथ में बाबा ने यह भी कहा, मैं इतनी गारंटी देता हूं, इतनी जिम्मेदारी लेता हूं, फिर भी माया बच्चों को फूल बना देती है, माना मूर्ख बना देती है। अभी अप्रैल मास आएगा ना तो बाबा कहते हैं अप्रैल फूल बना देती है। तो अभी से बाबा ने एडवांस में सावधान किया कि हमें अप्रैल फूल नहीं बनना है। जब बच्चे अप्रैल फूल बन जाते हैं तो क्या होता है, बाबा से डोर बांधते भी हैं, याद में बैठते भी हैं, लेकिन फिर पता नहीं याद में बैठे बैठे क्या हो जाता है। इसलिए बाबा कहे सदा ये याद रहे कि मेरी डोर एक बाप से बंधी हुई है। और भी रहस्य बाबा ने स्पष्ट किए हैं मुरली के अंदर कि त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हो, लेकिन त्रिमूर्ति अभी है कहां, अभी तो एक ब्रह्मा का रोल है, विष्णु का रोल पालना का सतयुग में होगा और शंकर का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। इसलिए बाबा ने बहुत भिन्न भिन्न रीति से रहस्य स्पष्ट किए हैं। लेकिन शुरू में जब साकार बाप दादा मुरली चलाते थे तो कोई एक सुंदर गीत बजता था तो गीत के आधार से पूरी मुरली की लहर चलती थी, बाबा उसी के ऊपर आगे सारी बातें स्पष्ट करते थे, स्मृति दिलाते थे। इसमें इस गीत का रहस्य भी आ जाता था तो आज भी उस गीत के आधार से पूरी मुरली की लहर चली है। तब सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज है 24 फरवरी 2026, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा से जोड़ती है, इसकी रसम अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? अभी हमारा कनेक्शन बाबा से है, हम एक से ही कनेक्शन जोड़ते हैं, तो उसकी रसम अज्ञान में क्या चलती है? उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप के द्वारा होगी, उनकी तो एक जन्म के लिए होगी, हमारी आधा कल्प के लिए होगी। हमने बाप के साथ अपनी डोरी बांधी, पल्लू बांधा, क्योंकि हमारा एक बाप से ही सर्व संबंध है। तो इससे गीत क्या होगा, जीवन डोर तुम्हें संग बांधी। ओम शांति। देखो गीत में कहते हैं, जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपने जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। आज का समय तो अलग है, बहने भी कन्याएं भी कमाती है, और कभी नहीं कमाता है पति तो बहन ही कमा कर घर चलाती है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है, बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, सदगुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है, क्योंकि हमारे सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ है। यहां तो सब ने डोर एक से बांध के बैठे हैं। वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। सूक्ष्म बात कैसे है, हमारी बुद्धि की डोर एक से है, बुद्धि में एक बाप के सिवा या एक बाप की बातों के सिवा कुछ नहीं आता। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो हरेक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है, वहां आसुरी मत की बातें हैं, तो फिर एक से डोर नहीं भी बांधे या और भी उनके अंदर मतभेद होते, मनभेद होते, लेकिन यहां सूक्ष्म बातें हैं, हमारी बातें एक बाबा से है। तुम्हारा कनेक्शन एक से ही है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से तो क्या होगा? एक ही रूहानी मत पर चलना है। आसुरी मत लेने से नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो, हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं, और परमात्मा से डोर बांधने से बहुत बहुत सुख मिलता है, जन्म जन्मांतर का सुख मिलता है। यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया बहुत गफलत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। एक बार बाबा ने कहा, तुम जब मेरे बनते हो तो सारे कल्प में तुम इतने नीचे नहीं गिरते हो जितने दूसरे। मैं तुम्हारा द्वापर युग में भी इतना सुख देता हूँ, इतने तुमको भक्त मिलते हैं, इतने इष्ट देव के रूप में तुम्हारी पूजा होती है, कलयुग अंत तक भी साथ रहता है। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बन जाती है कल्प कल्प। अभी हम बाबा से डोर बांध देते हैं तो कल्प कल्प की नींद हो जाती है, उनकी तो गिनती ही नहीं। बाबा के साथ हम कितनी बार डोर बांधेंगे कल्प कल्प, इसकी तो कोई गिनती नहीं। बुद्धि में बैठता है, हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं, हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। तुम जानते हो, कल्प पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं। अब बाबा शिव जयंती पर आए, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं। शिव कौन है, क्या करते हैं, कुछ भी मालूम नहीं। शिव बाबा जो पतित पावन है वो जरूर संगम पर ही आएगा, ये तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। इसलिए क्या गायन है, कोटों में कोई। तो यहाँ जो बैठे हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, बाबा के चुने हुए बच्चे बैठे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है और सब शास्त्र कहानी आदि है। ये धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। स्थूल रीति से नहीं बांधते हैं, लेकिन हमारी सूक्ष्म डोर बंधी हुई है। वो आजकल समर्पण समारोह भी करते हैं ना, तो इतनी सब बहनों का समर्पण होता है, तो सबका डोर एक शिवलिंग आगे होता है, शिव बाबा होते हैं, उनके साथ बांधते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें शरीर की कोई बात नहीं, बल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं को क्या मिलता है अभी? तुम आत्माओं की डोर, जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लू बांधते हैं ना, वो स्थूल पल्लव ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। ये योगी हमारा पल्लू है, हमारा जो योग बाबा के साथ लगा हुआ है, बुद्धि वहां जुड़ी हुई है, यही हमारा पल्लू है। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए थे ये किसको भी पता नहीं है। कब की तो बात छोड़ो, वो आएंगे और क्या करेंगे और अब आकर के कर रहे हैं, वो समझना भी बड़ी बात है। श्री कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब, ये नहीं जानते। वो मनाते हैं रामनवमी, जन्माष्टमी, लेकिन श्री कृष्ण सतयुग में हुए, राम त्रेतायुग में हुए, ये नहीं जानते। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय तीन मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहां है जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो? ये बहुत समझने की बातें हैं। लेकिन हम त्रिमूर्ति शिव जयंती, कोई पूछता है कि आप त्रिमूर्ति शिव जयंती क्यों मनाते, तो हम कहते हैं ना, इन तीन देवताओं की भी रचना करने वाले शिव हैं, उनके द्वारा कार्य कराने वाले भी शिव हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वो तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होती है। विनाश का कार्य तो अंत में होना है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है, जिसको अभी सनातन धर्म कहते हैं। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने, हरेक जानता है ये धर्म स्थापन किया और उसका ये संवत है। इस विषय कहते हैं ना, संवत ये चल रहा है, ऐसे उनका भी हर धर्म का अलग कैलेंडर होता है। फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया, इसलिए हर धर्म वाले अपना न्यू ईयर अलग अलग दिन मनाते हैं। भारत का किसको पता नहीं है गीता जयंती शिव जयंती कब हुई, किसको भी पता नहीं। श्री कृष्ण और राधे की आयु में कितना फर्क होगा? शास्त्रों में या दूसरे लोग तो राधा को बड़ी मानते हैं, कृष्ण को छोटा दिखाते हैं, क्योंकि उसकी सखी मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था ये किसको भी पता नहीं है। तुमको समझने में भी बहुत वर्ष लगे हैं। कितने सालों से बाबा हमको समझा रहे हैं, धीरे 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 ये बातें सारी बुद्धि में स्पष्ट होती जाती हैं। तो 2 दिन में कोई कहां तक समझेंगे, कोई कहे हम 2-3 दिन आएंगे ज्ञान लेंगे, इसमें कोई सारी बातें तो स्पष्ट हो नहीं सकती। कई लोग तो ऐसे भी हैं, 1 दिन है हमको मेडिटेशन सिखा दो, सीख सकते हैं नहीं सीख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो 2 दिन में कोई कहां से समझेंगे, बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, वह है बेहद का बाप, जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए। वो गॉडफादर के याद करते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उसको ये वर्षा किसने दिया। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं लेकिन उसको ऐसा बनाया किसने वो नहीं जानते। जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया वो कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था तो और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं, तो संगम पर ज्ञान दिया होगा। सतयुग में नहीं, जब सब पवित्र हैं तो कैसे ज्ञान देंगे, क्यों ज्ञान देंगे। ज्ञान देते ही है पवित्र बनाने, तो जब वहां है ही पवित्र तो कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं। वहां तो प्रारब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा, तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करेगा, बाप ही करेगा। तो ये सनातन धर्म की स्थापना स्वयं शिव बाबा ने की है, डायरेक्ट परमात्मा का स्थापन किया हुआ है। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, उसको ये प्रारब्ध कहां से मिली। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। ये सैपलिंग लगता है। अब बाबा ने आज का होमवर्क, फिर 1-2 होमवर्क दिए हैं। एक तो डोर परमात्मा शिव बाबा के साथ बंधी रहे, टूटे नहीं, और दूसरा ये सैपलिंग लगता है मोस्ट स्वीटेस्ट जाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5,000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं तो चोटी जरूर आएगी, बाजोली वो क्या बोलते हैं, गुलाट खाते हैं ना, तो उसमें फिर सिर तो जरूर आता है, चोटी तो जरूर आती है। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। ये शिव व रुद्र का यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा, सुबावा ने यज्ञ रचा, रुद्र ने यज्ञ रचा, इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह सुबावा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। किस लिए इतना बड़ा यज्ञ रचा? पतितों को पावन बनाने के लिए। रुद्र सुबावा निराकार है, वह यज्ञ कैसे रचे? जब तक मनुष्य तन में न आए, निराकार बिंदी कैसे यज्ञ रचेगा और कैसे सबकी आहुति दिलाएगा और कैसे परिवर्तन करेगा? इसलिए उनको भी साकार रथ लेना पड़ता है। मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में ये बातें होती नहीं। बाप समझाते हैं, ये संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था, अब फिर तुम ये बन रहे हो। ऐसा नशा रहता है ना, इस यज्ञ से पवित्र बनकर फिर हम सतयुग के देवता बन रहे हैं। ये जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। ये डोर क्यों बांधी है? बाबा बार बार आज याद दिला रहे हैं, तुम्हारी डोर बंधी हुई है, वो छूटे नहीं। क्यों बंधी हुई है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो, बेहद के बाप द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था, पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर क्या हुआ? चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं। इतने इतने जन्म लिए, भगवानुवाच्य वो गीता में भी आता है ना, अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति है, ब्रह्मा बाबा के तन में दो मूर्ति है, मूर्ति कहेंगे या आत्माएं कहेंगे, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। तो कितना स्ट्रांग हमको सपोर्ट मिला है। शंकर तो कभी पार्ट में आता ही नहीं, उसका पूरे ड्रामा में पूरे चक्र में कोई रोल ही नहीं है। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में ये है, हम कहते हैं हम सो ब्राह्मण सो देवता, और वो हम सो का अर्थ क्या बोलते हैं? उन्होंने कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाएगा। ये सब होना ड्रामा में नूंद है। तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, बाकी जो है वो इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। हम यज्ञ के साथी हैं, हम शिव बाबा के यज्ञ में सहयोगी हैं, बाकी सब क्या है, स्वाहा होने वाले हैं। ये भी एक रहस्य है। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? रात और दिन इकट्ठे कैसे होंगे, एक ही रहेगी, या पतित दुनिया रहेगी या पावन दुनिया रहेगी। पतित दुनिया का विनाश होगा इसमें तो खुश होना चाहिए, लेकिन हम बच्चे तो फिर भी खुश होते हैं, दुनिया वाले दुखी होते हैं, अरे विनाश हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा सब कुछ चला जाएगा, हमने इतनी मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, हमारा सब खत्म हो जाएगा। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले, कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। ये तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा कहते ये तो अच्छी बात है कि दुख की दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इसके बाद सुख की दुनिया आएगी, सतयुगी आएगा, इसलिए दुखी होते हैं। जब ये पता पड़े कि इससे सुंदर दुनिया आएगी, सुख की दुनिया आएगी, तो फिर वो भी खुश होंगे। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? बाबा कहते हैं शांति के लिए माथा मारने की दरकार क्या है, बस विनाश होगा शांति हो जाएगी। तुमको तो अब तीसरा नेत्र मिला है, वो कोई को नहीं है। कितना नशा है, कितनी बड़ी बात है कि हमको तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, रावण ने फिर श्राप दिया। ये बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना शाहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बन गए, क्यों बने गरीब? कितना शाहूकार बनाया, वो सारा धन कहाँ गया? इतना संपत्ति थी, इतना खजाना था, वो कहाँ गया? ये सब ड्रामा में नूंद है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो, भक्ति से भी वैराग्य करना है तो भक्ति से वैराग कब होगा? भक्ति से वैराग तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग है ना, सबको वैराग, पूरी दुनिया से, सब से। ये तो कब्रिस्तान है, 84 जन्म का चक्कर लगाया है, अभी घर चलना है। अब बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि पूरा चक्कर लगाया, अभी चक्कर पूरा हुआ, अब घर चलना है। तो घर जाने की तो सबको खुशी होती है, कोई भी बात पूरी होती है स्कूल की भी छुट्टी होती है, घर जाते हैं, जाना है तो बच्चे कितने भागते हैं, खुश होते हैं। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं, ये गारंटी है। याद के बिना विकर्मों को विनाश करने का कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? कहते माया ने तुमको फूल मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूं। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या हैं, कल हम क्या होंगे, परंतु क्या माया कम नहीं है? माया डोर बांधने नहीं देती, खींचा तान होती है। डोर बांधते हैं, ऊपर भी डोर खींचती है, नीचे भी खींचती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उनों को वर्षा किसने दिया ये कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं, बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूं। कितना प्यार से बाबा स्मृति दिला रहे हैं। यह तो बाप का काम है। इस समय सब नर्कवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो। यहां कोई आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है, बरोबर ठीक है। जो समझते हैं उसको अच्छा लगता है तो खुशी होती है। 84 जन्मों का हिसाब है। बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो। बाबा भी जानते हैं आधा कल्प कितनी भक्ति की, कितने मंदिरों में गए, कितने तीर्थ किए, तो बच्चे थकेंगे ना। मीठे बच्चे जब थक गए, बाबा देखता है कि बच्चे थक गए हैं, तो बाबा कहते मीठे बच्चे बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है, कहां ये दुख धाम और कहां वो सुख धाम, तो फर्क तो होगा ना। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूं। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता, अगर शिव बाबा नहीं होता तो क्या होता? अगर शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता? ड्रामा में सारी नींद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है, कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं? उन्हों को ये कहां बुद्धि में होगा कि शिव निराकार इस धरती पर आते हैं और इतना बड़ा कार्य करते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। वो तो उन्हें पता नहीं, वो तो समझते हैं शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ, उस दिन को उसकी यादगार दिन शिवरात्रि मनाते हैं। इतने बड़े कार्य का उनको अनुमान भी नहीं होता। कुछ भी समझते नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए, माना एकदम निश्चय हो जाना चाहिए। डोर एक के साथ बंधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो। कहीं कहीं छोटी मोटी गांठ बंधी हुई है, वो भी तोड़ के छोड़ के एक के साथ ही बांधनी है। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया, और कोई के साथ नहीं बांधो। नहीं तो और कोई के साथ बांधेंगे तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है। बाबा कितना सिंपल है, कोई ठाठ बाठ नहीं। वह तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप, वो बाप तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं। यह बेहद का बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका तो कोई ठाठ बात नहीं है, बहुत सिंपल है। यह बेहद का बाप कहते हैं, मैं पतित दुनिया पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूं। तो कहां ठाठ करेंगे। तुमने बुलाया है, हे अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। तो अभी इंजेक्शन लग रहा है। बाप कहते हैं, योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। ये इंजेक्शन है बड़ा। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता। इतना बड़ा पावरफुल स्ट्रांग इंजेक्शन लगाते हैं, जो 63 जन्म तक जो हम दुखी थे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो 63 जन्मों का दुख हरता 21 जन्मों का सुख करता है। तो कितना बड़ा स्ट्रांग इंजेक्शन है। इसलिए बाबा ने कहा, इंजेक्शन लगा रहा हूं तो डोरी बांध के रखो, डोरी और कहीं लगेगी तो खींचातान होगी, जब खींचातान होती है तो गिरते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा, डोरी और कहीं बंधी होगी तो गिर जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सारी मुरली फिर से रिवाइज हो जाएगी और ये होमवर्क भी अंडरलाइन हो जाएगा। पहली पॉइंट, अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। ये है पहला होमवर्क। और दूसरा होमवर्क क्या था, दूसरी पॉइंट, हम मोस्ट स्वीटेस्ट जाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रह, विकर्म विनाश करने हैं। तो ये दो होमवर्क बाबा ने दिया आज। आज का वरदान मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव, ये वरदान मिल गया। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। इसकी बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन है। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। वो कहते हैं ना, आजकल डॉक्टर्स भी ये चबा चबा के खाओ, ऐसे फटाफट अंदर नहीं निकल जाओ, जितना चबाएंगे इतना रस बनेगा, इतनी ताकत आएगी। तो बाबा कहते हैं शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वो सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। आज का स्लोगन, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुश रहे तो नेचुरली बड़ी बड़ी बातें होंगी, वो भी रिम पड़ेगी, भूल जाएगी, विस्मृत हो जाएगी। आज का व्यक्त इशारा, इसका टॉपिक चल रहा है एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो, चाल और हाल दोनों फरिश्ते जैसा। ऐसे नहीं कहो, बाबा कहते ऐसे नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सरकमस्टेंस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। कारण बताते हैं ना, बहाना बताते हैं, क्या करें, इतनी बड़ी बात थी, इतना बड़ा प्रॉब्लम था, तो साधारण तो हो ही जाएंगे ना। किसी समय भी किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप हरेक को अनुभव हो, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ, बातें आपको बदल ना दे, तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। अगर बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, समस्या के वश हो जाएंगे, तो फिर संगठन मजबूत नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर होमवर्क दिया है, सारा दिन अपने आप को चेक भी करेंगे कि हमारी डोर कहीं कमजोर तो नहीं होती। डोर कहीं और बांधी हुई तो नहीं है, एक से ही है, अटूट है, तब अचल अडोल बनेंगे, निर्विघ्न बनेंगे और बाबा की गारंटी पा सकेंगे। बाबा ने हमको 21 जन्मों के लिए गारंटी दिया है कि मैं आपका जिम्मेवार रहूंगा, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस इस एक जन्म में डोर मेरे साथ बांध दो, 21 जन्म निश्चिंत हो जाओ। इतना बड़ा तो कोई बड़ी बड़ी कंपनी भी रिस्क नहीं उठाएगी जितनी बाबा रिस्क उठाते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। दुनिया में हम देखते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं भी अनुभवी है कि जब चलते हैं तो बिजली का जो सुख हमें प्राप्त होता है वो लोड शेडिंग चलती है दुनिया में, कई घंटों तक कभी कभी बिजली मिलती नहीं है, लेकिन बाबा के घर में इतनी सुंदर व्यवस्था बनी हुई है कि कब बिजली आती है कब बिजली जाती है हमें पता ही नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसी सुंदर व्यवस्था को भी कभी कभी मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो बोर्ड पे तो वैसे लिखवा ही दिया है लेकिन फिर भी सभी को बता रहे हैं कि आज और कल जो जनरेटर है उसके पैनल का कुछ जरूरी मेंटेनेंस का कार्य होना है, तो कई बार बिजली आपको नहीं मिल पाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से डिटेल में काफी बोर्ड पर लिखा हुआ है, सुखधाम, विज्ञान भवन, राजयोग भवन, मातेश्वरी, सुदर्शन भवन, ओम शांति भवन, अनेक स्थानों पर बिजली आंशिक रूप से बाधित रहेगी, काफी लंबे समय के लिए भी बाधित रह सकती है, जनरेटर के द्वारा उसको बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, इस बात का सभी को ध्यान रहे और परेशान ना हो। ओम शांति।